ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भव
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद पहला अध्याय। प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या एक। श्रीनारद उवाच
श्रीनारद उवाच
एवं सुरादयः सर्वे
एवं सुरादयः सर्वे
ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतु मशकं मन्युः संरम्भम् संरम्भं सुदरासदम्
संरम्भं सुदरासदम्
संरम्भं सुदुरासरम् सुदुरासदम्
संरम्भं सुदुरासदम्
श्रीनारद उवाच
श्रीनारद उवाच
एवं सुरादयः सर्वे
एवं सुरादयः सर्वे
ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुम् अशकन् मन्युः संरम्भं सुदुरासदम् श्रीनारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुम् अशकन् मन्युः संरम्भं सुदुरासदम्
श्रीनारद उवाच
एवं
सुरादय
सर्वे
ब्रह्मरुद्रपुरःसरा नोपैतुमशकन्मन्यो संरम्भं सुदुरासदम्।
श्रीनारद उवाच
एवं
सुरादय
सर्वे
ब्रह्मरुद्रपुरःसराः
नोपैतुं
शकन्मन्यो
संरम्भं
सुदुरासदम्
श्रीनारद उवाच
एवं सुरादय सर्वे
ब्रह्मरुद्रपुरःसरा
संरम्भं सुदुरासदम्
श्री नारद उवाच
नारद मुनि ने कहा
एवं
इस प्रकार
सुर आदयः
देवताओं का समूह
सर्वे
सारे
ब्रह्म रुद्र पुरः सराः
ब्रह्म रुद्र पुरः सराः
ब्रह्मा तथा शिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाकर
ब्रह्मा तथा रुद्र द्वारा
प्रतिनिधित्व किया जाकर नहीं उपैतुम
भगवान के समक्ष
जाने के लिए अशकन समर्थ मन्यु संरम्भम अत्यंत क्रुद्ध होकर सुदुरासदम जिन तक पहुंच पाना दुष्कर है नरसिंह देव
उन्हें
अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद नारद मुनि ने आगे कहा ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ कि वे भगवान के समक्ष जाएं क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। तात्पर्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में गाया है क्रोध भक्त द्वेषी जने क्रोध का प्रयोग उस असुर को दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मात्सर्य ईर्ष्या इन सबों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त के लिए समुचित उपयोग है। भगवत भक्त कभी भी भगवान या अन्य भगवत भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकता और न ही भगवान भक्त की निंदा सह सकते हैं। इस प्रकार नरसिंह देव इतने अधिक क्रुद्ध थे कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी जी तक जो कि भगवान की नित्य संगिनी हैं उनकी प्रशंसा तथा यशोगान द्वारा उन्हें शांत नहीं कर सके। कोई भी भगवान के क्रोध को शांत करने में समर्थ नहीं हो सका किंतु क्योंकि भगवान अपना प्यार प्रह्लाद महाराज को जताना चाहते थे इसलिए सारे देवताओं तथा भगवान के समक्ष उपस्थित अन्य जनों ने प्रह्लाद महाराज को ही उन्हें शांत करने के लिए आगे कर दिया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्री श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल नरसिंह देव भगवान का जन्मदिन है उनकी आविर्भाव तिथि। भगवान नरसिंह देव भगवान श्री कृष्ण के विशेष रूप हैं। श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत नाम के ग्रंथ में बताते हैं कि भगवान के तीन प्रमुख रूप हैं, कृष्ण, राम और नरसिंहदेव। वैसे श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान के अनगिनत विस्तार हैं, उनमें से अनेक असंख्य पृथ्वी में प्रकट होते हैं या भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं और उनको हम अवतार कहते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि भगवान के सारे जितने भी विस्तार हैं आध्यात्मिक जगत में वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर प्रकट हों, परंतु जो प्रकट होते हैं तो उन्हें अवतार कहते हैं। तो जितने भी रूप हैं भगवान के, तो रूप गोस्वामी ये महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं कि तीन रूप उनके विशेष सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन से तीन हैं? कृष्ण, राम और नरसिंहदेव, इस क्रम से। और वैसे भी मनुष्य नर लीला, जब भगवान नर समाज में प्रकट होते हैं तो उनकी लीलाएं और भी मधुर मानी जाती हैं। और एक विशेष बात जो नरसिंह देव के संबंध में हम स्मरण कर सकते हैं वो ये है कि वो भक्तवत्सल हैं और उनके भक्तवत्सल्यता का प्रदर्शन उनके प्राकट्य में हुआ है। एक 5 साल का बच्चा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में एक 5 साल का बच्चा कष्ट में है, कठिनाई में है, संकट में है, और उस एक 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए स्वयं भगवान अपने वैकुंठ जगत से उतर के आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि प्रह्लाद महाराज की भक्ति कितनी तीव्र हुई होगी, कितनी शुद्ध हुई होगी कि स्वयं भगवान उस प्रेम से बाध्य होकर यहाँ पर प्रकट हुए। ये एक गलत सिद्धांत है कि भगवान स्वतंत्र है। सही बोला हमने कि नहीं बोला? देखिए, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं ना, तो किस दृष्टि से बोल रहे हैं ये हमें देखना चाहिए। तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो मैंने जो वाक्य कहा वो सरासर गलत है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत क्या है? सबसे पहला श्लोक कौन सा है भागवतम का? जन्माद्यस्यतः अन्वयाद् इतरतः चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। तो स्वराट शब्द का तात्पर्य क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र। तो यदि भगवान स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से, तो भगवान होने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान शब्द की अनेक परिभाषाएं हैं, उनमें से एक परिभाषा ये है कि भगवान वो हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। वो परम सत्य हैं जो कि किसी पर भी निर्भर नहीं है। बता सकते हैं आश्रय शब्द के संबंध में और भगवान का नाम क्या है? सर्वाश्रय आश्रय, समस्त आश्रयों के आश्रय भगवान है। अर्थात जितने भी अन्य सत्य हैं वो निम्न श्रेणी के सत्य हैं, सत्य हैं, परंतु वो निम्न श्रेणी के सत्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो परम सत्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो परम सत्य पे आश्रित रहते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पुराणों में कम से कम 5 विषयों की चर्चा अनिवार्य है, तभी उन्हें पुराण कह सकते हैं। और इन पुराणों में से जो महापुराण है, उनमें कम से कम या अधिकतर 10 विषयों की चर्चा होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों के बारे में जो श्लोक है, सब किसी को पता है?
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः
मन्वन्तरेषानुकथा विरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ये पहले 10 तत्व हैं। सर्ग, सर्ग अर्थात भगवान अर्थात महाविष्णु के द्वारा सृष्टि की रचना। विसर्ग अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा जी के द्वारा और ब्रह्मा जी के भी और जो अनुयायी हैं इत्यादि, उनके द्वारा सृष्टि का सृजन, योनियों अलग अलग लोगों का की उत्पत्ति करना और जीवों को अपने अपने योनियों में स्थित करना इत्यादि। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम, स्थानम का क्या मतलब है? लोक, तरह तरह के जो लोक हैं उनके बारे में। फिर पोषणम, पोषणम का अर्थ भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, पोषण प्रदान करके, आध्यात्मिक पोषण। आध्यात्मिक पोषण ही भक्तों की शक्ति है, भक्तों का आश्रय है, भक्तों का आनंद है। फिर उति अर्थात जो किसी कार्य के सृजन के लिए जो एक शक्ति की आवश्यकता होती है, प्रेरणा की आवश्यकता होती है, उसे उति कहते हैं। फिर उसके बाद मन्वंतर, जो दो मनु के बीच में अंतर है, मनु अंतर तो मन्वंतर, तो मनु के जीवन की अवधि 71 लगभग 71 चतुर्युग में जितने भी घटनाएं होती हैं उनका वर्णन, विशेष करके मनु के उस जीवन की अवधि में क्या क्या होता है, और हर एक मन्वंतर के भीतर एक मन्वंतर अवतार भी होते हैं। उसके बाद ईशानु कथा, भगवान के विविध अवतारों के और उनके भक्तों की कथाएं। फिर निरोधः, क्या मतलब? भौतिक सृष्टि का या भौतिक जीवन की समाप्ति। मुक्ति अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। और आश्रय, तो आश्रय ये भगवान श्री कृष्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पहले 9 ये जो तत्व हैं, ये 10वें तत्व के आश्रय में हैं, अर्थात श्री कृष्ण के। तो जिन श्री कृष्ण का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंद में किया हुआ है, वो श्री कृष्ण अन्य जितने भी तत्व हैं, अन्य 9 तत्व हैं, उनके वो आश्रय हैं। अन्य 9 तत्व आश्रित हैं, भगवान श्री कृष्ण आश्रय हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो 10 तत्व हैं वो कैसे कैसे पाए जाते हैं, कि सारे तत्व हर एक स्कंद में रहते हैं, या एक एक तत्व, एक एक जो ये विषय है ये अलग अलग तत्व में रहते हैं, कैसे? तो हर एक स्कंद में हर एक विषय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा तो हुई है, फिर भी ऐसे कभी कभी ऐसे स्कंद हैं, हर एक स्कंद में भी किसी एक विषय की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम में, जब उन्होंने अपनी टीकाएं इत्यादि लिखे तो हर एक स्कंद को उन्होंने एक शीर्षक दिया। तो इसीलिए ये आश्रय अंतिम दशम स्कंद को उन्होंने आश्रय सम्मम बोनम सर्वोच्च ये सर्वोपरि है वो ऐसे एक शीर्षक उन्होंने दसवें स्कंद को दिया। अंग्रेजी में सम्मम बोनम अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ है सबसे अच्छे जो है सबसे ऊंचे जो है जिन पर सब हर कोई निर्भर है। तो तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान स्वतंत्र हैं और जितने भी अन्य सत्य हैं ये अन्य नौ सत्य ये भगवान पर निर्भर हैं। तो आत्मा भी सत्य है परंतु एक निर्भर सत्य है। भगवान स्वतंत्र सत्य है पूर्ण सत्य है। तो दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान स्वतंत्र हैं पूर्णतया हर दृष्टि से। जितने भी अन्य सत्य भी हैं वो भी उन्हीं में विराजमान रहती हैं उन्हीं में निवास करती हैं। परंतु जब लीला की बात होती है रस की बात होती है तो भगवान अपने स्वतंत्रता को त्याग देते हैं बाध्य हो जाते हैं स्वतंत्र न होने के लिए। हर एक व्यक्ति अपनी बद्ध अवस्था में स्वतंत्रता की खोज में है कोई बंधन में नहीं रहना चाहता। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ किसी की बात मानना नहीं चाहता। तो संघर्ष जीवन का इसी में रहता है कि कैसे हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं किसी चीज़ का बंधन हमारे ऊपर न आ जाए न प्रकृति के नियमों का न किसी और को किसी दूसरे व्यक्ति का इत्यादि। परंतु ऐसा जो प्रयास है वो सदा निष्फल रहता है। तो व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयास करता है क्योंकि वो सोचता है कि स्वतंत्र होने में ही मेरी भलाई है मेरा सुख है। परंतु वो जानता नहीं है कि भगवान के चरण कमलों में अपनी स्वतंत्रता को समर्पित करना ही सच्चा आनंद है। अपने तथा कथित स्वतंत्रता को त्याग करना और फिर भगवान की भक्ति में भी स्वतंत्रता होती है परंतु वो भगवान द्वारा प्रदत्त होती है। दूसरी ओर भगवान तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हैं परंतु स्वतंत्र होना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं मेरे भक्त के अधीन हो जाऊं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजः है ना दुर्वासा मुनि को भगवान कहते हैं ना अहम भक्त पराधीन मैं भक्तों के अधीन हूँ हे दुर्वासा मुनि ही अस्वतंत्र इव द्विज हे दुर्वासा मुनि मैं निश्चित रूप से अस्वतंत्र हूँ। तो ये भगवान रस की बात कर रहे हैं लीला की बात कर रहे हैं। तो ये को विरोधाभास प्रतीत हो सकता है परंतु ऐसा नहीं है। तत्व के दृष्टि से भगवान स्वतंत्र हैं लीला के दृष्टि से भगवान स्वतंत्र नहीं है और स्वतंत्र नहीं होना भगवान पसंद करते हैं। भगवान को अधिक आनंद आता है अपनी स्वतंत्रता को त्यागने में। जिस प्रकार से हम एक मिथ्या भाव को स्वीकार करके बैठे हैं कि स्वतंत्र होकर हम आनंद ले सकते हैं परंतु सत्य है कि हम स्वतंत्रता को त्याग करके आनंद पा सकते हैं। इसलिए पूर्ण स्वतंत्र भगवान भी अपनी जब आनंद की वृद्धि करना चाहते हैं तब भी वो अपने स्वतंत्रता को त्यागना ठीक समझते हैं। तो किसी भी हालत में चाहे वो जीव के लिए हो भगवान के लिए हो स्वतंत्रता से पूरा आनंद नहीं मिलता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने स्वतंत्रता को एक ऐसे व्यक्ति के हवाले कर दें जो कि पूर्ण शुद्ध है पूर्णतया शुद्ध है। किसी के भी स्वतंत्र हम अधीन जाएंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। कोई निश्चितता नहीं है। हम बाध्य होकर शरणागत हो जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों पे, वस्तुओं पे, परंतु ऐसी कोई निश्चितता नहीं है कि ऐसे शरणागति से हमें कोई सुख मिलेगा, बल्कि दुख ही मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान भी इस तत्व को भली भांति जानते हैं, इसलिए अपने भक्तों के लिए वो अपने आप की अपनी स्वतंत्रता को भी त्याग देते हैं। तो इसलिए और सबसे बड़ा और क्यों ऐसा है, क्या ऐसे गुण है भगवान भक्तों के अंदर कि भगवान ऐसे अपनी स्वतंत्रता को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। भक्ति के 6 लक्षण है ना भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उनमें से 6ठा लक्षण कौन सा है?
श्री कृष्णाकर्षिणी।
तो भक्ति के लक्षण ऐसे हैं कि वो श्री कृष्ण को आकर्षित करती हैं। तो कौन भगवान को आकर्षित करते हैं? भक्त आकर्षित करते हैं या कौन करते हैं? भक्ति, जो भक्त के हृदय में भक्ति है वो भगवान को आकर्षित करते हैं। यदि वही व्यक्ति भक्त न होता, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं होती, तो फिर भगवान आकर्षित नहीं होते। तो दूसरे शब्दों में भगवान अपने भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उस भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, और ऐसे वशीभूत होने में वो बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। जितना आनंद भगवान को अपने भक्तों के शरण में जाने से मिलता है, अपने भक्तों के प्रेम से वशीभूत होने में मिलता है, उतना आनंद उनको स्वतंत्र होकर रहने में नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की भक्ति से बाध्य होकर कार्य कर लेते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए भगवान ने कई लीलाएं की हैं, अनंत लीलाएं की हैं, जैसे कि दामोदर लीला इत्यादि। उनमें से वैकुंठ जगत में देखा जाए तो प्रहलाद महाराज की लीला और नरसिंह देव का प्राकट्य ये एक और ऐसे उदाहरण है। तो हम ये जान सकते हैं भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए, क्योंकि वो अपने न केवल भक्त वात्सल्यता को प्रदर्शित करना चाहते थे, परंतु इस सिद्धांत को भी प्रस्तुत करना चाहते थे कि कैसे मैं अपने भक्तों के भक्ति के वशीभूत हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, प्रेम के वश में आकर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, कितनी भी दूर आने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इसलिए भगवान वैकुंठ से एक 5 साल के बच्चे के लिए आए। तीसरी बात है कि भक्ति ही एकमात्र योग्यता है जिसके द्वारा भगवान आते हैं, और कोई भौतिक लक्षण नहीं है। प्रहलाद 5 साल का बच्चा था, प्रहलाद को इतना बड़ा विद्वान नहीं था। प्रहलाद ने एक असुर कुल में जन्म लिया था, किसी ऊंचे कुल में नहीं। तो ऐसे देखा जाए तो प्रहलाद महाराज में ऐसी कोई खास योग्यता नहीं थी, फिर भी भगवान नरसिंह देव ऐसे बच्चे के लिए आए। तो ये तीसरी बात है जो सीखने को मिलती है हमें नरसिंह देव भगवान से। और एक बात ये है कि भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति इतना तीव्र होता है कि उनके प्रति यदि कोई अपराध करे तो उनके लिए असहनीय हो जाता है, और असहनीय होकर वो अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान के अंदर भी क्रोध है, बल्कि नरसिंह देव भगवान श्री कृष्ण के क्रोध के स्वरूप हैं, मूर्तिमान क्रोध नरसिंह देव भगवान हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सदैव नरसिंह देव भगवान क्रोधित ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जब क्रोध प्रकट करना होता है तो नरसिंह देव भगवान जैसे क्रोध और प्रकट नहीं कर सकता। कृष्ण ही है नरसिंह देव भगवान, परंतु जब इस प्रकार का भयंकर क्रोध प्रकट करना होता है तो श्री कृष्ण नरसिंह देव का रूप स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा क्रोध जो कि अभूतपूर्व न भूतो न भविष्यति, ऐसा क्रोध, और इसका उदाहरण यहाँ पे और इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है, इतना क्रोध कि इस ब्रह्मांड के जो प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा जी शिव जी आदि, ये सब भी डर रहे हैं भगवान नरसिंह देव के सामने आने के लिए। तो ये भी भक्त हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भक्त हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। लक्ष्मी जी नहीं आ पाई सामने, ऐसा भी प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं तात्पर्य में। तो जब ये सारे बड़े बड़े भक्त जो इतने ऊंचे पद पे हैं वो भगवान के सामने आके आने का साहस नहीं कर रहे थे, और अपनी प्रार्थनाओं से भगवान के गुणगान से भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए थे, समर्थ नहीं थे भगवान को शांत करने के लिए, परंतु प्रहलाद शांत कर पाए भगवान को, क्योंकि वो प्रहलाद के ऊपर कृपा दिखाने के लिए ही आए थे, केवल देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं कि हिरण्यकश्यप बहुत बड़े राक्षस हैं, सारे ब्रह्मांड के नाक में दम बन गए हैं, उत्पात कर रहे हैं। ठीक है, वो गौण उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य था कि अपने भक्त की रक्षा करनी है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्रोध का प्राकट, ये बहुत विशेष बात है। तो भगवान क्रोध करते हैं, ये कई लोगों को एक आश्चर्य की बात लगती है, क्योंकि भगवद गीता में बताया गया है कि क्रोध तो रजोगुण से उत्पन्न होता है। कौन से भगवद गीता के श्लोक में कहा गया है ये? काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भव। तो ये काम और क्रोध ये दोनों रजगुण से उत्पन्न होते हैं, और हिंसा जो घोर हिंसा आदि है ये भी तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो भगवान स्वयं अभी क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या भगवान राजसिक हैं? क्योंकि क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है ना। तो भगवान ने ऐसा क्रोध का प्रदर्शन किया जो अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं किया गया था, तो फिर इसका निष्कर्ष ये निकला ना कि सबसे राजसिक व्यक्ति तो भगवान ही है। दिव्य क्रोध है, हाँ, तीन गुणों से परे है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? सातवें अध्याय का तेरहवां श्लोक। तेरहवां श्लोक कौन सा है? त्रिभिर गुणमय भावे एवि सर्वम इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तो इस श्लोक का अर्थ कौन समझाएंगे? मोहितम मोहित है,
मोहितम नाभिजानाति, इस तीन गुणों की वजह से मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाता है, जो माम एभ्यः मैं जो परम अव्यय हूँ, मैं परम अव्यय हूँ, मैं मेरा कभी व्यय नहीं होता, नाश नहीं होता, मेरे जैसे व्यक्ति को वो जान नहीं पाता कि वो तीन गुणों से प्रभावित है।
हाँ ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं कि ये त्रिगुणमयी जो प्रकृति है इसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित रहता है। हर एक व्यक्ति जो इस भौतिक सृष्टि में है वो तीन गुणों के अधीन है, तीन गुणों के द्वारा मोहित हो जाता है, और इसीलिए वो भगवान को उस भगवान को जो कि अविनाशी हैं, अव्यय हैं, उनको उनके बारे में क्या सोचते हैं कि भगवान को जान नहीं पाते। दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि कई अज्ञानी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तीन गुणों के अधीन हूँ। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो स्वयं तीन गुणों के अधीन है। आप समझे ना, क्योंकि ये लोग स्वयं तीन गुणों के अधीन है, इसलिए मुझ अव्यय अविनाशी भगवान को भी तीन गुणों के अधीन होना ऐसा समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार एक चुटकुला सुनाया था कि एक आदमी था जो बहरा था, तो कभी कभी अपनी पत्नी को बुलाता था। वो अपनी दूसरे कमरे में होती थी, ये एक कमरे में, तो बुलाता था जोर से, तो पत्नी कहती थी मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, लेकिन पत्नी की आवाज़ इसे नहीं सुनाई देता था। तो ये सोचता था कि या तो सुन नहीं रही या तो जवाब नहीं दे रही है। फिर और ज़ोर से बुलाता, फिर वो कहती मैं आ रही हूँ ना आ रही हूँ ना, लेकिन ये दूसरा जवाब भी ये आदमी सुन नहीं सकता था। गुस्सा होकर बोला अरे बहरी हो क्या, मैं कब से बुला रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते बहरा तो ये आदमी है, वो बहरी नहीं है, वो तो सुन पा रही है, वो तो उत्तर दे रही है, लेकिन ये सुन नहीं पा रहा है, इसलिए वो सोचता है ये सुन नहीं पा रहा है ना। तो इसी प्रकार से भगवान तीन गुणों के अधीन नहीं है, हम तीन गुणों के अधीन है, इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान तीन गुणों के अधीन है। हम साधारण हैं, हम बद्ध हैं, इसलिए हम सोचते हैं भगवान भी बद्ध हैं। क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं भौतिक सृष्टि में तो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, विशेष करके जब नर समाज में मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, इसलिए कभी कभी भगवान ऐसा अद्भुत रूप स्वीकार करते हैं, आधा सिंह और आधा नर। तो यहाँ पे भगवान का जो क्रोध है वो भी दिव्य है, क्योंकि भगवान सदैव तीन गुणों के परे रहते हैं, गुणातीत अवस्था में सदैव भगवान रहते हैं। प्रकृति सदैव भगवान के निर्देशन में चलती है, भगवान के अधीन है, इसलिए कभी भी भगवान रजोगुणी कार्य, तमोगुणी कार्य, सतोगुणी कार्य भी नहीं करते हैं। उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं, चाहे उनका जन्म हो, उनके विविध प्रकार के कार्य हो, वो सब दिव्य होते हैं। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये बहुत विडंबना की बात है। कौन सा श्लोक है? तद अत्यंत विडंबना। तो क्या अत्यंत विडंबना की बात है? हाँ यस गोविंद जी प्रभु बोलो। विश्वात्मन बहुत अच्छा। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मन तिर्यक नृशिशु यादसो तद अत्यंत विडंबनम। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं कि जन्म कर्म च विश्वात्मन, अभी आप हे विश्व के आत्मा, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म होता है, आप कर्म भी करते हैं, यद्यपि अजस्य अकर्तुः, यद्यपि आप अजह हैं, अर्थात आपका जन्म कभी नहीं होता, अकर्तु हो, आप कभी कोई भौतिक सृष्टि के कार्य नहीं करते, नहीं आप बाध्य हैं किसी कार्य को करने के लिए, आप अजय हैं और अकर्तु हो हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। और आप जन्म लेते हैं तो कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? तिर्यक नृ ऋषिषु यादहसु, आप पशु योनि में जन्म लेते हैं, ऋषियों की योनि समाज में जन्म लेते हैं, मनुष्यों की योनि में जन्म लेते हैं, कभी जलचर प्राणियों की यादहसु कभी जलचर प्राणियों के बीच में भी जन्म लेते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार में किया उन्होंने। तो ये सारी बातें तद अत्यंत विडम्बनम, ये बड़ी विडम्बना की बात है, मन को भ्रमित कराने वाली बातें हैं कि कैसे आप दिव्य होने के बाद भी आप विविध योनियों में जन्म लेते हैं। तो भगवान नरसिंह देव का जो रूप है वो न एक पशु का है न मनुष्य का है, भगवान ऐसे अद्भुत रूप भी कभी कभी प्रकट कर देते हैं। तो ये बहुत ही विडम्बना की बात है। तो वो भगवान जो कि सदैव गुणातीत अवस्था में रहते हैं, क्रोध को कभी प्रकट करते हैं, परंतु ये क्रोध शत प्रतिशत दिव्य है, ये भौतिक प्रकृति से के रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध ही नहीं है। यह भौतिक सृष्टि में जो भी पाया जाता है वो आध्यात्मिक जगत के इन्हीं गुणों का विकृत एक रूप है या प्रतिबिंब है। जैसे यहाँ जो हम क्रोध पाते हैं दुनिया में, तो ये क्रोध आध्यात्मिक जगत में क्या है अपनी शुद्ध अवस्था में?
दया।
किसने कहा? दया। तो जो दया है आध्यात्मिक जगत में, उसका जो विकृत प्रतिबिंब है वह क्रोध। उसी प्रकार से प्रेम जो आध्यात्मिक जगत में है उसका विकृत प्रतिबिंब है काम। ऐसे वहाँ जो भी गुण पाए जाते हैं दिव्य गुण, उनका विकृत प्रतिबिंब यहाँ पे पाया जाता है इस भौतिक जगत में। परंतु वहाँ पर भी क्रोध होता है, परंतु वो क्रोध पूरी तरह से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। यहाँ पर क्रोध अहंकार से उत्पन्न होता है, अरे इसने मेरे संबंध में ऐसे कहा, कैसे उसकी इतनी औकात, क्या औकात उसकी मेरे बारे में ऐसे कहा, तो ये अहंकार से उत्पन्न होने वाला है। परंतु वहां कोई मिथ्या अहंकार नहीं है। तो क्योंकि ये सब दिव्य है, और दिव्य शब्द का तात्पर्य है हमारे लिए कि भगवान से संबंधित, तो यदि हमें भी क्रोध का प्रयोग करना है तो भगवान से संबंधित होना चाहिए, तब वो दिव्य कहलाता है। साधारणतः ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो केवल भगवान के लिए अपना क्रोध का प्रयोग करते हैं। कब भगवान की सेवा के लिए भी कब क्रोध का प्रयोग करना चाहिए और कब नहीं, इसके लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि भगवान की सेवा के नाम पर बस क्रोधित होते रहें और आए दिन सबके चिल्लाते रहें और झगड़ा करते रहें, और ये गलत समझ है इस बात की। बहुत अकलमंदी से, समझदारी से व्यक्ति को क्रोधित होना चाहिए, और उसे क्रोध के नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, उसे क्रोध का प्रयोग करना चाहिए जैसे एक औजार का प्रयोग कोई व्यक्ति करता है। यदि हमें इतना क्रोध आ जाए कि बस नियंत्रण के बाहर हम चले जाते हैं भगवान की सेवा में भी, तो वो भी ठीक नहीं है। हनुमान जी ने क्रोध का सही प्रयोग किया, स्वयं भगवान भी क्रोधित हुए। कोई उदाहरण, नरसिंह देव भगवान का उदाहरण तो सबसे प्रमुख हमारे सामने है। और कौन से ऐसे उदाहरण हैं जहां भगवान ने क्रोध का प्रदर्शन किया?
चैतन्य महाप्रभु
ने
जगाई मधाई
के ऊपर क्रोध का प्रदर्शन किया, और
भगवान राम ने समुद्र के ऊपर
क्रोध व्यक्त किया, और फिर वो चले आए हाथ करबद्ध अवस्था में, आए क्षमा कीजिए, और भगवान ने भीष्म देव के ऊपर भी क्रोध प्रकट किया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें हम देखते हैं कि भगवान ने क्रोध को प्रकट किया है, तो हर बार जब भगवान क्रोध प्रकट करते हैं तो वो दिव्य ही होता है। उसी प्रकार से कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्त भी क्रोध प्रकट करते हैं और कर सकते हैं, परंतु बहुत समझदारी से और जो बहुत ही आगे बढ़े हुए भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका क्रोध जो है हमेशा भलाई के लिए होता है। नारद मुनि भी कभी शाप देते थे, परंतु उनका शाप जो है आगे चल के शापित व्यक्ति के भलाई के लिए ही होता था। तो नरसिंह देव भगवान का क्रोध पूरी तरह से दिव्य है। तो भगवान यहाँ इस लीला से संबंध या ये हमें उपदेश या शिक्षण देना चाहते हैं कि देखो, क्रोध का उपयोग भी मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो, परंतु मैं केवल मेरी सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान ने क्रोध का प्रयोग क्यों किया? अपने भक्त के लिए किया, प्रह्लाद के लिए किया, प्रह्लाद की रक्षा के लिए किया। तो यदि किसी भक्त की रक्षा के लिए हमें क्रोध का उपयोग करना पड़े तो वो ठीक है, या भगवान की सेवा के लिए करना पड़े तो ठीक है, अन्यथा नहीं, क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो और एक बात हमें बताएं कि कैसे भगवान के सारे कार्य दिव्य होते हैं। अभी आप जब विविध प्रकार के कार्य देखते हैं समाज में, हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये कार्य राजसिक है, ये कार्य तामसिक है, ये कार्य सात्विक है ना। तो जैसे कि समझ लीजिए, हम कोई शिकार कर रहा है, यहाँ पे शिकारी लोग आते हैं ना, पशुओं की हत्या करते हैं, तो किस कौन से गुण में है ये? तामसिक है। फिर कोई खेती कर रहा है, मतलब रासायनिक पदार्थ वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे ही, तो वो किस तरह का कार्य है? राजसिक है। इसमें सात्विक और राजसिक का मिश्रण है ना। जब वो राज वो सब रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करता है तो राजसिक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सृजन है, इसलिए थोड़ा बहुत रजोगुण का उसमें रजोगुण की उपस्थिति है, परंतु वो कार्य बहुत सात्विक कार्य है। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो ये कौन से गुण में है? सत्वगुण में है ना। तो अभी कोई व्यक्ति किसी की खून करता, हत्या करता है, बहुत क्रूरता से उसकी हत्या करता है, उसकी बूटी बूटी काट देता है, काट के दे, क्या करते हो? कौन से गुण में है?
तामसिक।
किसी ने किसी दूसरे किसी व्यक्ति के शरीर को फाड़ दिया, उसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो निकाल दिए, तो कौन से गुण में है?
तमोगुण
में है। तो किसी व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के पेट को फाड़ दिया, उसकी हथड़ियां निकाल दी, इंटेस्टाइन, और अपने गले में लगा दिया ऐसे हार के रूप में, तो कौन सा गुण है ये?
तामसिक
है। तो किन्होंने ऐसे किया था? नरसिंह देव ने किया। तो फिर नरसिंह देव ने तामसिक कार्य किया नहीं? कैसे? अब ये तो बोला कि तामसिक कार्य ऐसे करने से, क्यों नहीं?
क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति नहीं, भगवान
व्यक्ति नहीं है,
भगवान है।
तो भगवान भी तो व्यक्ति है है ना। उनका व्यक्तित्व दिव्य है, क्योंकि ये कार्य भगवान कर रहे हैं, इसलिए वो सदैव दिव्य रहता है। हम और आप ऐसे कार्य करेंगे तो ये निश्चित ही तामसिक कहलाएगा, परंतु जब भगवान करेंगे तो वही कार्य दिव्य कहलाएगा। एक व्यक्ति जाता है दूसरों की पत्नियों के साथ में, अनेक महिलाओं को जो अन्यों की पत्नियां हैं उनको लेके एकांत स्थान में जाके बीच रात में नृत्य करता है, कौन से गुण में आता है ये?
रजोगुण
में। तो किन्होंने ऐसे किया था ना? किन्होंने किया था?
श्री कृष्ण
ने वृंदावन में किया था। तो इसका मतलब है श्री कृष्ण ने बहुत राजसिक कार्य किया। नहीं हा? नहीं क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान जो भी करते हैं दिव्य हैं। जब एक मनुष्य ऐसे कार्य करेगा तो वो राजसिक कहलाएगा, परंतु जब भगवान करते हैं उसी कार्य को तो वो दिव्य है। उसी प्रकार से जब हमने पढ़ाई की बात की तो दो भाई थे जो अवंती गए और सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाके पढ़ाई कर रहे थे। कौन थे वो दो भाई? कृष्ण और बलराम। तो वो सात्विक थे, सही? नहीं, भगवान सात्विक भी नहीं है। चलो राजसिक तामसिक समझ लेते हैं, पर नहीं ऐड करो तो सात्विक तो है, हो सकते हैं ना?
शुद्ध
सत्व। सत्व गुण भी भौतिक गुण है ना? इसलिए भले कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे अध्ययन करने से, शांत चित्त से बैठे अध्ययन करने के लिए, तो वो सात्विक है, परंतु जब भगवान ऐसे पढ़ाई करते हैं, छात्र बन जाते हैं, तो वो दिव्य ही रहते हैं। तो भगवान जिस प्रकार का कार्य भी क्यों न करें, वो सदैव दिव्य ही रहता है, क्योंकि भगवान सदैव दिव्य स्तर में रहते हैं। तो करने वाले की के स्तर की का अनुमान लगाना, इसके पहचान करना, ये आवश्यक है। केवल कार्य को नहीं देखना है कि जो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है, उसकी आध्यात्मिक परिस्थिति क्या है, ये देखना आवश्यक है। तो यहाँ पर नरसिंहदेव भगवान को क्रोध है, और ऐसा क्रोध है कि उन्होंने नरसिंह हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को फाड़ कर उनकी हथड़ियाँ लगा के माला लगा दी, सारे शरीर पे खून 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 सब लग रहा था। क्रोध रजोगुण में है या तमोगुण में है? रजो और तमो में। राजसिक गुस्सा भी हो सकता है, और जब वो गुस्सा नियंत्रण के बाहर जाता है और व्यक्ति ऐसे को जघन्य कार्य कर देता है, तो वो गुस्सा तामसिक हो जाता है। जब बिल्कुल कोई सब तहस नहस कर देता है गुस्सा में, गुस्से में आके, जैसे कोई शराब पी के गुस्सा करता है, सारे शरीर सब घर के अंदर जो भी चीज़ें तोड़ देता है, सबकी पिटाई करने लगता है ना, तो ये तामसिक गुस्सा हो जाता है। तो क्रोध भी राजसिक हो सकता है, परंतु जब बहुत ही विकृत और भी ज़्यादा हो जाता है तो वो तामसिक भी हो जाता है। तो भगवान श्री भगवान ने नरसिंहदेव के रूप में न केवल राजसिक क्रोध प्रकट किया, परंतु तथाकथित ऐसे प्रतीत होने वाले कि तामसिक क्रोध प्रकट किया। और बार बार ऐसे करते थे, उन्होंने शिशुपाल के साथ क्या किया, गर्दन ही काट दी, है ना? तो भगवान अपने उदाहरण से ये दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, मैंने क्रोध का प्रयोग किया, परंतु मेरे भक्त के लिए किया, और मैं जब क्रोध व्यक्त करता हूँ तो ये सदा दिव्य रहता है। तो ऐसे कई भगवान के लीलाओं के द्वारा बहुत कुछ सीखने लायक ऐसे विषय होते हैं। तो भगवान नरसिंहदेव के लीला से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज केवल ऐसे गिने दो चार ऐसे विषयों के बारे में हमने चर्चा की। भगवान नरसिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
नरसिंह या नरसिंह, नरसिंह बोलते हैं, नरसिंह बोलते हैं,
ये उच्चारण की बात है। सिंह ये हिंदी में कहते हैं, मराठी में सिंह बोलते हैं, मराठी हिंदी में सिंह बोलते हैं, संस्कृत में इसके बीच में है, सिंह सिंह सिंह। परंतु हिंदी में बात करते हैं तो नरसिंह नरसिंह पर नरसिंह नरसिंह ये हिंदी का है, नरसिंह नरसिंह हल्का सा उसमें होता है। परंतु अंग्रेजी में जब दे रहे होते हैं तो नरसिंह कहते हैं।
भगवान का सेवा कार्य हमेशा दिव्य रहता है और भगवान के शुद्ध भक्त का भी इसी प्रकार से रूप दिव्य रहता है। तो अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है और वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो कार्य कैसे
तो निर्भर करता है कि किस चेतना में किया उस व्यक्ति ने वो कार्य, क्यों किया, किस परिस्थिति में किया, निर्भर होता है। कभी कभी भक्त लोग भी आपस में कुछ मतभेद कर लेते हैं ना, तो कभी कभी अरे तुरे हो जाता है भक्तों के बीच में कभी कभी। तो किस हद तक वो दिव्य है और नहीं है ये परिस्थिति पर निर्भर होगा,
क्या परिणाम
देशकाल पात्र के अनुसार।
परिणाम से भी अगर समझ सकते हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है तो वो दिव्य है कि ऐसा ही कुछ।
जैसे नारद मुनि ने जब श्राप दिया तो उसका परिणाम क्या था, कुंवर और नलकुंवर और मणिग्रीव को भगवान का दर्शन हुआ, उनका उद्धार हो गया, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान ने जब किसी शिशुपाल की हत्या की तो मुक्त कर दिया। तो यदि कोई व्यक्ति दिव्य स्तर में स्थित है तो उसके जो कार्य अन्यों के भलाई के लिए ही होंगे। परंतु यदि कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे तो फिर उसके भलाई के लिए नहीं होगी, या आधा थोड़ा बहुत शुद्ध है थोड़ा नहीं है, तो जिस हद तक वो शुद्ध है उस हद तक भलाई होगी, बाकी नहीं होगी। तो कार्य का अपने आप में महत्व अवश्य होता है, परंतु केवल कार्य को नहीं देखना है, कौन व्यक्ति है जो कर्ता कौन है, कर्ता अर्थात जो व्यक्ति करने वाला है काम वो कौन है, उसकी चेतना क्या है, और तीसरी बात किस परिस्थिति में ये कार्य किया गया, ये सब चीजों का विचार होता है। हाँ गोविंद जी,
साधु भजन क्रिया,
आपने गोविंद जी प्रभु को कभी कभी क्रोध प्रकट करते हुए देखा है? मीठा है। देखो क्या बोल रहे हैं सर, गोविंद जी प्रभु का क्रोध भी बहुत मीठा होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। हाँ बोलो गोविंद जी। प्रभु
श्रद्धा से कृष्ण प्रेम का स्तर रहा है तो किस तरह एक भक्त स्वतंत्र प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र हो जाएगा, प्रकृति के नियम इतने त्रस्त हमें करते हैं, तो किस तरह हम कितने हद तक हम
क्रमशः, वो क्रमशः होता है। और जब हम कहते हैं कि प्रकृति के नियमों से हम मुक्त हो रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसके कई ऐसे लक्षण होते हैं। अनर्थों से मुक्त होना, किस प्रकार के अनर्थों से मुक्त होना, इसका भी क्रम है, जिसका वर्णन विस्तार में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कदम्बनी नाम के ग्रंथ में किया है। एक बार यहाँ गोकुलधाम में ब्रह्मचारी यात्रा में हमने चर्चा की थी ना विस्तार में, तो क्रम से भक्ति के किस अवस्था में कौन से अनर्थों का विनाश होता है वो भी बताया गया था। सबसे अंत तक रहता है वैष्णव अपराध, बाकी सब चीज़ें तो निकल जाती हैं जल्दी से, वैष्णव अपराध के जो फल होते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कल नरसिंह जयंती यहाँ मना रहे हैं आप सब, तो कल कौन कथा दे रहे हैं? हाँ, अभिनंदन कौन दे रहे
हैं? अब तो
फाइनल नहीं
किया,
शाम को ही करोगे ना, फिर बाहर बाहर कर लोगे।
सुबह यहाँ सब डिवोटीज के लिए होगा, जो इस विशेष शाम को सब बाहर से लोग आएंगे, बाहर
तो सजाओगे ना मंदिर?
नरसिंह यज्ञ भी कर रहे हैं।
नरसिंह यज्ञ भी कर रहे
हैं। अच्छा, कौन करेगा?
बोले तो
माधव चरण और सोनार गौर हरे प्रभु की सजावट मंदिर की। हाँ, हरे कृष्णा हरि बोल। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल।